फिर क्या करते, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ठीक है तुम जाओ इनके ऊपर, ठीक है तुम तसल्लुत करो, जो करना है करो, वशारिकुम फिल अमवाली वल औलाद, इनके साथ शिरकत कर लो माल में भी और औलाद में भी। माल और औलाद में शिरकत कैसे होती है? माल में सबसे पहले तो शिरकत का एक तरीका, यानी शैतान शामिल हो जाता है उसमें, पार्टनर बन जाता है। आप पार्टनर बनाते वक्त कितना देखते हैं कि जी फलाने को पार्टनर बनाए कि ना बनाए, कोई ऑनेस्ट होना चाहिए, कोई फलां ऐसा होना चाहिए जो मेरा पार्टनर बने, लेकिन आपको पता है कि शैतान भी पार्टनर बन जाता है। शैतान कैसे पार्टनर बनता है? जब इंसान से वो हराम कमाई कराता है तो उसके माल में वो पार्टनर बन जाता है। कितने फ्रॉड हो रहे हैं, झूठ के जरिए माल कमाना, हेरा फेरियों के जरिए माल कमाना, कहना कुछ, दिखाना कुछ, इसके जरिए माल कमाना, ये सब हराम से माल कमाया हुआ जहन्नुम में इंसान को लेके जाता है। तो ये तो फिर वो सारी चीजें कराता है ना जो जहन्नुम में ले जाने वाली होती है। तो इसलिए इंसान के माल में ऐसे शरीक हो जाता है। इसी तरह फिर इंसान से इसराफ करवाता है, तबजीर करवाता है। आपने इसराफ भी देख लिया, तबजीर भी हमने लास्ट टाइम देखा था। तो तबजीर क्या होता है? यानी बेफजूल हराम कामों में या लव कामों में, बेकार के कामों में खर्च करना, जरूरत नहीं है फजूल में खर्च किए जाना, तो ये भी शैतानी हरबा होता है। इस चीज को बहुत कसरत से खरीद के रख लेना, जखीरा अंदोजी करना, गलत जगहों पे इन्वेस्ट करना, सूद खा लेना, ये भी माल में शिरकत है ना, रिश्वत लेना, और बाज दफा कब्रों पे खाने पकवाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, मिजार बनाए जाते हैं उनके ऊपर, ये सब इसमें शिराकत है, माल में शरीक हो गया, जुआ खेलना, इसी तरह बेहयाई के चीजों के ऊपर खर्च करना, जहां से बेहयाई आती है वहां पे खर्च करना, तो खर्चे में भी कमाई में भी ये शरीक हो जाता है, ये आपके माल में शिरकत है इसकी। कि जब वो काम करवाए जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, उस टोटली ऑपोजिट जाके उससे ऑपोजिट करेंगे तो वो शरीक हो गया, पार्टनर बन गया। अब देख रहे हैं कहां कहां पार्टनर बना हुआ। तो अल्लाह ताला ने इसको आजादी दे दी कि ठीक है तुम साजी बन जाओ। अब आप देखें इसके प्यादे कैसे दिन रात इस काम में भी लगे हैं, चोरियां चकारियां डाके, और उसके बाद फिर थोड़ा सा अल्लाह के रास्ते में दे के सदका करके सोचना हमने तो बड़ा कुछ अच्छा कर लिया, अब हमारा सारा डाका मारा हुआ, ये रिश्वतों पे पैसा लिया हुआ, बेईमानी का पैसा, ये सब हलाल हो गया। वो पार्टनर बना लिया उसको, तो फिर उसके बाद दुआएं कैसे कबूल होंगी, कैसे फिर उसके बाद इंसान नेकी के काम कर सकता है जब हराम का लुकमा अंदर क्या होगा। इस तरह से ये शरीक होता है, उसको इंस्टिगेट करता है कि तू हराम से कमाई कर ले, हालांकि हलाल से भी इंसान को जितना उसके नसीब में उतना मिल जाना है, इतना अल्लाह ने लिख दिया ना रिस्क, उतना मिल के रहना है, लेकिन साथ झूठ शामिल करवा देगा, कसमें झूठी कसमें नहीं है, खुदा की कसम इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं है, मिलावट करा देगा, धोखा वाली बातें कर देगा, इस तरह से करके इंसान की कमाई को हराम करवा देता है। तो जब वो हराम हो गई तो फिर सारा काम आसान हो गया। वल औलाद, और औलाद में भी शरीक हो जाता है, हाँ औलाद में भी शिरकत करता है। अल्लाह अकबर। औलाद में शिरकत कैसे है? औलाद को जो औलाद जिना से पैदा हो तो वो औलाद के अंदर शिरकत है इसकी। इसी तरह औलाद में शिरकत ये भी है कि औलाद की तालीम और तरबियत अल्लाह ताला की फरमा बरदारी के ऊपर उनकी उठान नहीं करनी, बल्कि उनको दूसरी चीजों सिखानी है, दूसरी चीजें पढ़ानी है। मैं हैरान होती हूँ आजकल वालदैन के ऊपर भी कि कैसे वो अपनी औलाद की गलत कामों के ऊपर किस तरह से फखर कर रहे होते हैं। अगर बेटी जो है वो डांस करती है तो उसको उतना करके बताते, हमारी जो बेटी ने ऐसा डांस किया, ऐसा गाना गाया, ऐसा वो मेरा मर्दों के आगे वो नाच रही है, उसके ऊपर बाप भी बैठे हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, घरों में बच्चों को ऐसी बेहया सीन्स उनके साथ देखना, औलाद के अंदर आप साजा लगा रहे हैं शैतान का, बच्चों को उंगली पकड़ के सिनेमा ले जाना और वहां पे बेहयाई फिल्में देखना, गाड़ियों में म्यूजिक लगा लेना, औलाद सुन रही है उसके कानों को भी म्यूजिक का आदि बनाना, शरीक कर लिया ना अपने शैतान को अपनी औलाद में भी। हम अपनी औलाद की फिक्र तब करना शुरू करते हैं जब वो टीनेजर हो जाते हैं, जब वो हाथों से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं हाय अब क्या करें, बच्चा बिगड़ रहा है, तो इसकी फिक्र अभी नहीं करनी थी, इसकी फिक्र तो पहले करनी थी, कब करनी चाहिए थी फिक्र, उसकी फिक्र ये नहीं कि जब वो 3-4 साल का है, उसकी फिक्र उस वक्त करनी है जिस वक्त से बीज डालना, यानी जब शोहर अपनी बीवी के पास जाए तो अल्लाह से दुआ करके उसके पास जाए, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान वजन्निब शैतान मा रज़क्तना, ए अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और उसको भी जो तू हमें अता फरमाए। और पैदा होते ही हजरत मरियम की वालदा ने क्या दुआ की थी, उन्होंने भी शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह में अपनी बेटी को दिया था, तो पैदाइश के वक्त भी दुआएं करनी, उसके बाद अकीका करना, अजान देना कान में, ये सारी चीजें हैं जो छोटे होते से बच्चे के साथ हैं। पहले असलाफ में ऐसा होता था, माएं दूध पिलाती थी साथ कुरान पढ़ती थी, आज वो गाने सुन रही हैं तो वो बच्चे के कानों में आप क्या डाल रहे हैं, और हलाल लुकमा उसके मुंह में दिया जाए तो अगर, क्योंकि अगर आप उसको इस तरह की तरबियत दे रहे हैं जो कि खुद भी अल्लाह की नाफरमानी की है, अगर एक माँ खड़ी के ऐसा लिबास पहनती है तो बेटी से वो कभी भी एक्सपेक्ट ना करे कि बेटी जो है वो बड़ी नेक पारसाई का लिबास पहन के खड़ी हो जाएगी, अगर खुद माँ का गला डीप है और स्लीवलेस है या हाफ स्लीव है, तो बच्ची उससे भी आगे बढ़ के उस बिल्कुल ही छोटे पहनेगी, जितने पे माँ है उससे भी आगे बढ़ेगी। हम पहले खुद एक शैतान के रास्ते पे चल के और फिर ऐसी मिसाल कायम करते हैं कि बच्चे भी फिर पीछे पीछे जाते हैं, इसी तरह एबॉर्शन कराना ये भी शैतान के, क्योंकि शैतान ने कहा ना मैं इनकी इसकी जुर्रियत को चट कर जाऊंगा, ये अबॉर्शन कराना आज इतना कॉमन हो गया है कि हर एक औरत कहती है कि हाय बस मुझे नहीं और बच्चा चाहिए, बस दो ही बच्चे अच्छे हैं, या औलाद पैदा ही ना करना, आज लड़कियों में ये भी बड़ा ट्रेंड आ गया कि जी हमारा फिगर खराब हो जाएगा बच्चे पैदा करेंगे, शैतान है ये पीछे, वो तो चाहता ही नहीं है वो आदम की औलाद पैदा हो, इसको खत्म करो, नीस तो नाबूद तो ना, दिमागों के अंदर औरतों के ये डाल दिए, तो औलाद तो मुसीबत है, दो से ज्यादा बच्चों को तो पालेगी कैसे, बस ये तो तुम्हें तो खत्म हो जाएगी इनके पीछे, दफा करो, औरत कहती है हाय वाकई मेरा तो मेरा क्या हाल हो जाएगा, हाय इतनी मुसीबत। अच्छा कई लोगों को देखा, या रब मैं तो हैरान होती हूँ, ओए बच्चे हो जाएंगे फिर हमारा क्या, हमने नहीं बच्चे करने, वो इंसान अपनी नस्ल बढ़ाने पे, एक वो मुशरिकी ने मक्का थे चलो फिर बच्चों के ऊपर वो फखर करते थे, चलो वो उनको होता था कि हमारी औलाद ज्यादा हो, आज तो वो भी चीज शैतान ने ले ली, यानी हम बदतरीन आगे की आगे बदतरीन दौर की तरफ भी जा रहे हैं, वाकई कुर्बे कयामत है, कि वो कहते हैं कि इसकी औलाद ही पैदा ना हो, औलाद ही बंद करा दो, आज आप देखें खास तौर पे ये यूरोप वगैरह के अंदर इतने कम बच्चे के, एक न्यूज थी कि उनके बूढ़ों को संभालने के लिए कोई जवान ही नहीं है क्योंकि बच्चे ही नहीं पैदा करते, तो बाहर से उनको लाने पड़ रहे हैं कि कोई इमिग्रेंट्स आए तो आके उनके बूढ़े को संभाले, बूढ़े मरते नहीं है और बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इनको कौन देखेगा, बच्चे कितने कम है, जवान कितने कम है वहां पे, और आज हम भी अंधाधुंध इसी चीज पे चल रहे हैं, हमें तो खैर वेस्ट में जो कुछ हो रहा हमने अंधाधुंध बस वही कॉपी करनी है, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता कि हमारे क्या, या जो बड़े जिनको सेलिब्रिटीज कहा जाता है वो कुछ कर रहे हैं तो बस हम भी वही कर रहे हैं, तो तो जब हमने देखा कि वो भी कहते हैं कि ऐसे हम तो खराब हो जाएंगी, औरत तो औरत की जिंदगी खराब हो जाएगी। कई लोगों ने इतना, मुझे याद है मेरे पहला बच्चा पैदा होने से पहले कोई लोगों ने कहा कि देखिए आपने जो मजे करने अभी कर लें, उसके बाद तो ना सो सकोगी ना कहीं जा सकोगी, बस हर वक्त फीडर बैग ये डायपर बस इनके अंदर ही पड़ जाओ। कि ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी किसी मुसीबत में पड़ने वाली हूं। नहीं, हमने क्या पोट्री किया हुआ अपनी औलाद को। कभी कभी ये है कि ये पेट में ही मर जाए, हाय दुनिया में आए ही ना, उससे खौफजदा हो जाते हैं, उनको मार देते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन करा रहा है पीछे, औलाद में साजा लगा रहा है। तो इंसान देखें अपनी औलाद का दुश्मन हो गया, ये वो करा रहा है जो आपका दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि आप बढ़ें फलें फूलें। अल्लाह अकबर। आप देखें इसी तरह औलाद की जो गलत तरबियत है वो भी फिर यही शराकत है कि अब अगर उनके दीन की फिक्र नहीं है वालदैन को, दुनिया की तो फिक्र है कि दुनिया का दरबड़ा अच्छा इनका करियर बन जाए, इसकी तालीम हो जाए, लेकिन बाकी कोई फिक्र नहीं, बाकी परवाह ही नहीं है कि वो उसको कलमा भी आता है कि नहीं, उसको कुरान की समझ भी है कि नहीं, उसने कभी नमाज पढ़ी भी है कि नहीं। बस एज लॉन्ग एज वो बस दुनिया के अंदर तरक्कियां कर रहा है तो हमारा फखर इसी के अंदर है। हमने को मौलवी थोड़ी बनाने हैं बच्चे, और हैटिक ही ना बन जाए। नहीं बाबू, ज्यादा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज्यादा मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, खुद ही कहना शुरू हो जाते हैं किसको शरीक बना रहे हैं सब। वो तो पुकार लगा रहा है, वो तो दावत दे रहा है, वो तो इनवाइट कर रहा है। अब ये नहीं क्या कि उस बरी जिम्मा हो सकते, हमें तो शैतान ही बहका रहा है, हम क्या करें। ये नहीं क्या कि बरी जिम्मा हो सकते, शैतान बहकाता है, लेकिन उसके बहकावे ऐसे नहीं है कि वो आपसे जबरदस्ती कुछ करा ले। वो कयामत के दिन भी कहेगा कि जब वो जहन्नुम के अंदर चला जाएगा तो सूरह इब्राहिम में आता है ना कि वो कहेगा कि मैंने तुमसे वादा किया और अल्लाह ने भी तुमसे वादे किए, लेकिन मैंने जो तुमसे वादे किए वो सब वादे झूठे थे और मैंने अपने वादे पूरे नहीं किए, और अल्लाह ताला ने जो तुमसे वादे किए तो सब सच्चे थे, मेरा तुम पे कोई जोर नहीं था, मैंने तो बस तुम्हें वसवसा डाला था। आगे वादों की भी बात आ रही है। हम ये जो लोग इस तरह गलत काम करते हैं और गलत चीजों में पड़ते हैं, उनमें से बास कहते हैं कि हाँ हमारा खुदा पर ईमान है, हम शैतान की सुनते हैं लेकिन हम हमारा खुदा पे भी ईमान है, शैतान की वर्शिप करते हैं अल्लाह को भी मानते हैं हम। तो आप देखें तो उनका फिर उनसे अगर पूछा जाए ना कि आपको हिसाब किताब नहीं उसके ऊपर नहीं यकीन है, तो कहते हैं हाँ हिसाब किताब में यकीन है, शैतान जहन्नुम में जाएगा, ये उनके मुंह की बात है, मैं आपको फर्स्ट हैंड जो भी इंटरव्यूज है ना उनसे ही बातें बता रही हूँ। शैतान जहन्नुम में जाएगा और वहां पे वो जहन्नुम में इन कंट्रोल होगा, तो फिर हम जाहिर है जब हम उसके साथी होंगे हमें थोड़ी कुछ कहेगा, हमें हमारा तो। और आप देखें इवन कार्टून्स में, टॉम एंड जेरी के कार्टून में दिखाया जाता है शैतान है वो हेल में है और वो लोगों को मार रहा है, यानी वो इन कंट्रोल दिखाया गया। ऐसे देखें सबने लिमिनल मैसेजेस हमें दिए जाते हैं, हमारे बच्चों के दिमागों में डाले जाते हैं। जब आप बच्चों को इनके हवाले कर देंगे कि बस वो इन्हीं से सीखें, जो भी मीडिया इनको सिखा रहा है वो ही सिखाए, माँ बाप अगर अपना फर्ज ही अदा नहीं करेंगे, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको ही नहीं पूरा करेंगे, आपने तरबियत के लिए किसी और को रख लिया तो शैतान को ही साजी बना लिया। माँ बाप अगर दोनों जॉब में लगे हुए हैं, बच्चों को उन्होंने किसी और के हवाले किया हुआ, तो जिसके हवाले किया है फिर वो तो अपनी सोच डालेगा ना, तो इस तरह से उनको शैतान के हवाले कर दिया। चाहे वो टीवी के आगे बिठा देंगे, चाहे वो किसी ऐसे बंदे के पास भेजेंगे जो खुद ही सही नहीं है, जिसका खुद का दीन ईमान नहीं है, ऐसी नैनीज रख लेंगे, तो क्या क्या किसको साजी बनाया। तो वाइद हूँ, और वो वादे वादे कर उनसे, जो 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 तूने इनसे वादे करने हैं वो वादे कर। अब इसके वादे भी बहुत तरह के हैं, और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान के वादे कौन कौन से हैं ना, मैं 15-16 चीजें आपको बताऊंगी, बहुत सारे वादे हैं, मतलब थोड़ी चीजें तो आप नोट कर सकते हैं कि कैसे वो वादे देता है। देखिए, काम अमल पे इंसान को राजी कर देता है कि बस इतना ही कर रहा है। आप तुम कुरान पढ़ती हो, नमाज पढ़ती हो, तहज्जुद तुम पढ़ती हो, तो क्या हो गया? इतना काफी नहीं है? अब इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है? यानी उसको ना मुतमईन कर देता है कि बस इतना ही काफी है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, और हमने करना क्या है, हिजाब हमने ले लिया बस काफी है। दूसरी बात ये, गुनाहों को मुजयन करके दिखाता है, ये खूबसूरत करके दिखाता है, उनमें अट्रैक्शन लेकर आता है। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि क्यों म्यूजिक सुनते ही हम ऐसे से घिलना शुरू हो जाते हैं, वो वाकई उसके अंदर बड़ा मजा आ रहा होता है, तो उसको मुजयन ये शैतान करता है। क्यों डीप नेक गले, और क्यों एक औरत जिसकी साड़ी का ब्लाउज बहुत छोटा है, कहते हैं बहुत सारी औरतें कहती हैं वैसे स्मार्ट तो यही लगता है, ये जो सारा फुल स्लीव पहन के पूरा पूरा ब्लाउज पहन लेना साड़ी का, मुझे तो मजा नहीं आता, असल तो स्मार्ट ये लगता है। ये कौन खूबसूरत बना रहा है? फिर उसके बाद इसको खूबसूरती दिखाना कि ये औरत कितनी खूबसूरत लग रही है, जो मेकअप करके अपनी आप को रिवील कर रही है, अपनी ब्यूटी को और अपने जिसामत को, ये कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, जिसका एक एक बॉडी पार्ट नजर आ रहा है, कपड़ों से भी झलक रहा है, कितनी स्मार्ट है। इस तरह से जो कुरान पढ़ने वाली है, अच्छी भली भी दीन वाली, भी कॉम्प्लेक्स में रहती है, हाय हमने क्या ये शुरू कर लिया, बाया स्काफ आए आए, मैं भी थोड़ा सा इसको कम कर देती हूँ, मेरा ख्याल शैतान डाल रहा है। अट्रैक्टिव उस चीज को बनाता है, खूबसूरत करके दिखाता है, हालांकि वो आग के शोले हैं, आग है, लेकिन वो आग हमें नजर नहीं आती। अल्लाह की फरमाबरदारी में उसकी रजा है, उसकी खुशी है, वो नजरों से ओझल कर देता। तीसरी बात ये, अल्लाह ताला से ये कहता है अल्लाह से डरते रहना, भी अल्लाह से डरते रहो मगर अमल नहीं बदलना, क्योंकि कुरान में है शैतान ने कहा इन्नी अखाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो डरता हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन से। हम भी ये कहते हैं बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं अल्लाह से, लेकिन अमल नहीं बदलना। बड़े गुनाहगार हैं, गुनाहगार तो हैं लेकिन गुनाह नहीं छोड़ना, ये भी इसका टैक्टिक है, ये इसका वादा है, ये अमल ना बदलना। फिर और क्या वादे करता है? दीन आसान है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तो क्या हो गया, अल्लाह ताला ने पकड़ थोड़ी ली ना इतनी इतनी बातों के ऊपर, बड़ा गफूर रहीम। इस तरह के धोखे के वादे करता है कि इंसान अपनी बुराइयां ना छोड़े, बस यही कहता रहे अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम, ये कह कह के ये उससे करवाते रहो जो करवाना है, ये कहला दो फिर जो मर्जी करा लो, जिना करो, गालियां दो, झगड़े करो, कीने रखो, हक मारो, और ये कहते जाओ अल्लाह गफूर रहीम है, तो यू आर ओके देन, ये वादा है ना। फिर गुनाहों के नित नए मंसूबे बनवाता है, इतना नेकी कर ली कोई बात नहीं, अगर इतना से ये कर लिया तो इतनी भी क्या क्यामत आ गई, ये हो गया तो फिर क्या हो गया मेरे से, आखिर दीन इतना भी रिजिड नहीं है, कभी बिल्कुल औलिया अल्लाह बन गए, वे कभी बिल्कुल शैतान बन गए, पल में तोला पल में माशा, कभी इधर हो गए कभी उधर हो गए, ऐसे करवाता है कि कोई बात नहीं नेकी तुम कर ही रहे हो ना, तो ये भी इतना हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुरान तो हम पढ़ते ही है ना। नंबर 6, ये जिंदगी में जिंदगी एक दफा मिलती है, ये भी इसका वादा है कि तुम इंजॉय कर लो, ये दोबारा थोड़ी मिलनी है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यू ओनली लिव वंस। और आप देख लें आज ही कितना वादा चलता है उसका, ये एंजॉय कर लो बार बार थोड़ी आना है। एक और वादा है, आखिरी उम्र में हज करके गुनाह बख्शवा लो, यू आर ओके, अभी जो करना ना कर लो, बूढ़े होके हज कर लेंगे, अभी नहीं हमने हज पे जाना, भाई एक ही दफा जाएंगे, उस बार फिर गुनाह बख्शवा लेंगे, हमारी बख्शिश हो जाएगी। फिर एक और बात करता है कि गुनाहों के खूबसूरत नाम देता है, देखिए आपको कहेंगे ये गुनाह ये कर लो, इससे थोड़ी कोई करेगा, उसको रैपिंग खूबसूरत ना, जैसे गंदी चीज को, गलीज चीज को खूबसूरत रैपिंग में बंद करके किसी को दे दिया जाए। इस तरह ही आप देखें, लॉटरी का नाम रख दिया इनाम है ये, म्यूजिक का नाम रख दिया ये रूह की गिजा है, और ये जो बेहयाई के काम कर रहे हैं उनको लेकर रहती है ये स्टार्स हैं हमारे, ठीक है। और फिर बदतमीजी को, बेहयाई को, बात को कह दिया बोल्डनेस है, बड़ी बोल्ड है ये, जो दीन पे चलने वाले उनको फंडो कहना शुरू कर दिया। ये क्या है, अल्लाह अकबर। फिर इस तरह से जिना को कह दिया लव मेकिंग है, वैलेंटाइन को कितना खूबसूरत कर दिया। अच्छा, आप एक और चीज करता है, ईमान वालों से बदगुमान कर देता है, उनके बारे में डिफरेंट बातें दिमाग के अंदर डालता है, ये तो ऐसे हैं, देखा बड़े देखे हैं, बड़े हिजाब वाली देखी हैं वो तो ऐसे होती हैं, बड़े मौलवी देखे हैं वो तो ऐसे होते हैं, फलाने ने ऐसे कर दिया, देखा उसकी न्यूज ऐसी थी। अच्छा, जो एक्टर एक्ट्रेसेस करते हैं वो सारा अच्छा है, वो सारे नेकी के काम है। दीन वालों से बरगुश्ता कर देना, उनके बारे में इल फीलिंग्स ले आना, तो जाहिर है कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा, सारे तो नहीं ऐसे होते, लेकिन ऐसे उनसे बदगुमान करना। फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी के साथ खुशियों का तसव्वुर देना, और अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ बोरियत का, ईद है बोर है, क्रिसमस है वो बड़ी मजेदार है, देख लेना आप, खुशी का तसव्वुर इसके साथ है अल्लाह की नाफरमानी के साथ। अब खुशी कोई होगी तो नाचना झूमना म्यूजिक, इसके बगैर तुम्हारी खुशी ही नहीं हो सकती। और जो मुसलमानों की चीजें वो सारी बोर है, आज हालांकि देखें हमारे मुसलमान कल्चर और हिंदुआना कल्चर में कोई फर्क नहीं रहा, सेम हो गया। फिर एक और इसका टैक्टिक है, नेकी करवा लेना फिर रियाकारी करवा देना, उसको जाया करा देना, दिखावा करा के इस तरह से उसका अमल ही जाया करा देना। बड़े बड़े नेकी के काम इंसान करता है, फिर शो ऑफ कर देता है, तो चलो जी सारा अमल खत्म, मैंने तो इतने कुरान पढ़ लिए, मैंने तो इतना काम करती हूं, मैं तो दीन की इतनी खिदमत कर रही हूँ, मैं तो इतने लेक्चर देती हूँ, मैं तो फलां काम करती हूँ, मैं तो इधर पढ़ती हूँ, उधर पढ़ाती हूँ, उधर सीख रही हूँ, इतना हिफ्ज कर रही हूँ, इतना ऐसे कर, लो जी सारा गारत कर ले, नेकी 10 नेकियां करा के बस एक दफा रियाकारी करा दी, सब खत्म। फिर गुमराही पे हिदायत का लेबल लगवाता है, इसराफ और तबजीर है ना, तो उसको कहते का ये तो नीड ऑफ द आवर है, सूद है तो कहते कि इसके बगैर तो गुजारा नहीं, रिश्वत है तो ये तो आज इसके बगैर कैसे आज के तो चल सकते हैं, सेग्रीगेशन का कहेंगे तो कहेंगे कि आंखों में हया होनी चाहिए, पर्दे का कहेंगे तो फिर वो नजरों का पर्दा होना चाहिए। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है, वो तो वात शैतान हमने पहले पढ़ा था, एक दफा में सबसे बड़ा काम नहीं करा लेता, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये नहीं कहता गुनाह करो, सबसे पहले नेकी छुड़वाता है, आहिस्ता आहिस्ता नेकी छूटती जाती है, आपको खुद भी फीलिंग होती होगी ईमान कब बढ़ता है, ईमान कब घटता है, नेकी से आप आजकल करीब हो रहे हैं कि नेकियों के कामों से दूर हो गए, नेकी में सुस्ती आ रही है कि चुस्ती आ रही है, आप रमजान में देखें किस तरह चुस्ती आ जाती है, अब बाकी दिनों में देखें भी, बाकी दिनों में भी कोई दिन होता है बड़ी चुस्त होते हैं, कई दिन होता है आप डाउन होते हैं, कहीं अब ईमान बड़ा होता है, कहीं भी ईमान बिल्कुल घटा होता है, क्या चीज हो रही होती है पीछे, ये आपको आहिस्ता 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 जो नेकी से पहले दूर करता है फिर गुनाह की तरफ लेके जाता है, और गुनाह भी एकदम बड़ा नहीं कराता, छोटे से स्टार्ट करता है। जैसे मैंने आपको राहिब की वो कहानी का बताया, वो बहुत जबरदस्त है हमें सीखने के लिए कि शैतान किस तरह स्टेप बाय स्टेप लेकर जाता है। वो राहिब एक दिन में उसने लड़की से जिना करके उसको कत्ल नहीं कर दिया, स्टेप बाय स्टेप लेके गया, कहां वो राहिब जो दुनिया को छोड़े बैठा हुआ अल्लाह की इबादत में लगा हुआ, कहां वो जिना जैसे कबीरा गुनाह में मुबतला हो गया, एक दिन में उसको कहा जाता इसे जिना कर दे कभी ना करता, पर कैसे पहले उसके पास खाना रखना, फिर उसके बाद अंदर कैसे उससे बाहर बैठ के बातें करना, फिर अंदर बैठ के बातें करना, फिर कैसे उसको टच करना, फिर उससे बाद आगे बोसो किनार, फिर उससे बाद आगे जिना, फिर उसके बाद आगे कत्ल भी, कितना कुछ करा दिया। तो वो एक दिन में नहीं इंसान को फांसता, वो बड़ा एक्सपर्ट हो चुका है, हजारों लाखों साल हो गए हैं जब से दुनिया बनी, वो इसी काम में इंसानों के साथ लगा हुआ है। टैक्टिक सेम ही है, सेम टैक्टिक्स है, लेकिन बस इंसानों को समझ नहीं आते, उन समझ ही नहीं पाते कि ये शैतानी टैक्टिक्स हैं। फिर देखिए पहले बड़ा ये चाहता है कि इंसान शिर्क करे, शिर्क नहीं करता तो चलो, जो शिर्क नहीं करना चाहता तो उसको तो बिदत में मुबतला कर देता है, बिदत नहीं करता तो उसको फिर मुबाह कामों के अंदर मुबतला करता है, ऐसे काम जिनका कोई फायदा ही नहीं, ना दुनिया का फायदा ना आखरत का फायदा, ऐसे कामों में ना वक्त को जाया करवा दे। सूरह मोमिनून में है ना कि जो मोमिन इनकी सिफात है उनमें है कि लगव से भी एराज करते हैं, लगव से भी मुआरिदीन है वो, एराज करने वाले। तो अल्लाह ताला के सामने जब हम खड़े होंगे ना, तो उसने ये नहीं पूछना कि आपने घर के काम कितने किए, आप सोशल मीडिया पे कितनी देर बैठी रही, आप अपनी सेल्फीज कितनी लेती रही, आप कितनी हसीन लग रही थी, आपने कहाँ कहाँ से किस किस एंगल से अपने पोज लिए, ये नहीं आपसे पूछा जाना, आप क्या करके आए हैं वो पूछा जाना। और हमारा कितना वक्त लग कामों में रहता है, हम कहते हैं इसमें कौन सा गुनाह है जी, फेसबुक ही देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे ही हूँ मैं, टिकटॉक टिकटॉक वो उसके ऊपर ही हूं मैं, तो क्या हो गया, हर वक्त बेकार वक्त गुजारना। इवन ये कि सियासत के पीछे कोई लोग, उन्होंने कहते हैं इसमें कौन सा गुनाह है, ठीक है गुनाह नहीं है लेकिन मुबाह है ये ना, इसका कोई फायदा भी नहीं है आखरत में, क्या फायदा मिल रहा है। ठीक है एक न्यूज की हद तक आपने एक दफा सुन लिया, हर वक्त उसी को डिस्कस करना, हर वक्त उसी के प्रोग्राम देखते रहना, हर वक्त उसी पे अपडेट रहना, कौन सा सियासतदान खड़ा हुआ है, कौन सा बैठा है, वो सो गया, अब वो बाथरूम भी गया तो उसकी भी न्यूज है, ये कौन सा तरीका। इस तरह से करके शैतान इंसान का वक्त ऐसी चीजों में लगवा देगा कि उसको फुर्सत ही नहीं कि आखरत के लिए अपने कोई काम कर, मस्जिद जाने की फुर्सत नहीं, हाँ वो सारे प्रोग्राम देखने, और फिर हम आगे से कहते हैं इसमें गुनाह कौन सा। फिर कबीरा गुनाह को सगीरा बना के दिखाता है, मसलन है झूठ है कबीरा गुनाह है, उसको कहते हैं फिर क्या हो गया, आजकल तो सारे झूठ बोलते। बेपर्दा होना, औरत का पर्दा ना करना, आपको पता है कबीरा गुनाह है क्योंकि कुरान में है इसका हुक्म, ये सगीरा गुनाह नहीं है, लेकिन आज देखे बस तो क्या हो गया, नहीं तो फिर तो ये सही नहीं, फिर तो मैं ऐसे ही बैकवर्ड लगूंगी, देख लेना ये भी। अब इस तरह की चीजें, बेपर्दगी को मॉडर्निज्म का नाम दिया गया, ये भी खूबसूरत नाम, ये खूबसूरत पैकिंग उसी ने कराई है ना, मॉडर्न होना है ये तो। इस तरह बड़े अजर के काम छुड़वा के छोटे छोटे कामों पे लगवा देता है कि अगर इंसान नेकी का काम करना ही चाहता है कोई बड़ा ना कर ले, छोटा सा करा लो, छोटा सा हो जाए ठीक है, क्योंकि छोटा होगा तो ये बड़े की तरफ कभी ना जाए। और जन्नत जहन्नुम हिसाब किताब आखरत इसके बारे में हमेशा ये ख्याल डालता है, कल देखी जाएगी कुछ नहीं होता, ये डिप्रेशन की बातें ना करो आखरत की बातें करके, कल हमने चले जाना है, जिंदगी इतना वक्त नहीं रह गया, ये डिप्रेसिव बातें हैं, हमें ना सुनाओ डिप्रेसिव बातें, उसकी फिक्र लाने ही नहीं देता। हाँ जॉब चली जाए इसकी फिक्र डाल देगा, पैसे कम हो जाएंगे, बच्चे कहां से कल को खाएंगे, इनकी फीसों का क्या होगा, ये फिक्रें बहुत लाएगा, लेकिन आखरत की जो सबसे बड़ी फिक्र होनी चाहिए, जो हमेशा की जिंदगी है, अब बच्चों का पता नहीं, अपना भी पता नहीं कि जिंदा रहना है कि नहीं कल तक, उसकी फिक्र कितनी हावी रखता है, इनके रिश्तों का क्या होगा, इनके इसका क्या होगा, फलानी मेरी चीज का क्या होना है, उस उन फिक्रों के अंदर ही उलझाए रखता है, उलझाए रखता है, दिमाग इतना उलझा रहता है ना, जब आपका दिमाग ऑलरेडी ऑल द टाइम कंज्यूम्ड रहेगा यहाँ की फिक्रात से, यहाँ की परेशानियों से, यहाँ के मसले मसाइल से, तो आप आगे कैसे सोचेंगे, आगे की आखिरत की कैसे फिक्र आएगी आपको, कभी आ ही नहीं सकती, कभी फुर्सत को, दिमाग खाली होगा तो फिक्र करेंगे ना, दिमाग खाली नहीं होता, यही के झमेलों में पड़े हुए हैं, बिल कैसे देना है, उधर जाना है, इधर करना है, उसके मिलना, इन्हीं चीजों में है। तो ये चीजें इंसान के लिए, वो ये हथियार इस्तेमाल करता है इंसान के खिलाफ, और हमारे पास क्या हथियार है, हमारे पास क्या है चीज है इसका मुकाबला करने के लिए? अगर हिजबु शैतान है तो हम कैसे इसका मुकाबला करें? इसका मुकाबला करने का तरीका ये कुरान है, इससे शैतान के वारों से बचा जा सकता है। ऐसे ही नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कुरान पढ़ने लगो तो औजु बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़ो, क्योंकि ये नहीं आने देगा। इसकी तो सारे वो तो एक्सपोज हो गया ना इस कुरान से, इस कुरान में उसके सारे कच्चे छटे खुल गए, उसके सारा पर्दा खुल गया उसका, उसकी सारी हरकतें बता दी गई। अब इंसान फिक्र करेगा, वो क्यों चाहेगा कि आप फिक्र करें अपनी आखिरत की? तो चाहेगा आप यहीं पे लगे रहें, यहीं पे गुम रहें, इसी दुनिया के अंदर, इसी झमेलों के अंदर। कोई किसी को देख लो बिजनेस में गुम है, किसी औरत को देख लो वो घर में और अपने किचन में ही गुम है, किसी को देख लो तो वो शॉपिंग में गुम है, किसी को देख लो तो वो अपने कपड़े बनाने में ही ऐसी गुम है, फैशन में ही इतनी गुम है कि उसको कोई होश ही नहीं। हर एक कहीं ना कहीं गुम है, उसे निकलता ही नहीं। तो जो जहां गुम है उसके बाद अगर वो उसी में गुम रहता है तो शैतान का तो काम बन गया, उसी के अंदर मर जाएंगे। और फिर आगे सरप्राइज होगा कि ओ इसकी तो मैंने तैयारी ही नहीं की, क्योंकि उसने गुम रखा ना। ये तलबीस इबलीस इतनी अच्छी बुक है, जब मैं इसको पढ़ती हूं तो मैं बस इतना मैं डरती हूं, या अल्लाह हम तो खुद शैतान के फंदे में, अपनी बात करती हूँ, या अल्लाह मैं तो खुद शैतान के फंदे में फंस गई, या अल्लाह कैसे इससे फरार है? अल्लाह तू ही बचा सकता है, तो अल्लाह से दुआएं। और वाकई ये असर करता है, ये जो बार बार हमें कुराने पाक में इसका रिमाइंडर मिलता है ना, इस वाक्य का, किस्सा इबलीस और आदम का जो रिमाइंडर मिलता है, इसमें इतना सबक है कि आज सुबह जिस तरह से मैंने दुआ की है ना अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे भी, मेरी नस्लों को भी, अल्लाह मेरे पूरे खानदान को, मेरे सब प्यारों को अल्लाह शैतान से बचा लेना, इसके वसवसों से बचा लेना, तो पहले कभी इस तरह से नहीं किया। आज स्टार्ट में भी जैसे मैंने आउज बिल्ला को जिस तरह से सोच के पढ़ा है, और आउज बिल्ला समीर अली मिन शैतान रजीम मिन हमजी व नफ्खी व नफ्थी, ये जैसे पढ़ा है वो पहले नहीं पढ़ा, क्योंकि इंसान फिर कहता है कि है, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, फिक्र लग जाती है, और ये कुरान ये फिक्र लगाता है। तो इस कुरान की तरफ जब इंसान बढ़ता है तो अपने बचाव के लिए इंतजाम करता है, और कभी ये ना सोचे कि हाय अब हम क्या कर सकते हैं, लो जी शैतान तो इतना हमारे ऊपर हावी हो गया, हम तो इससे बच ही नहीं सकते, हम बचेंगे तो बचेंगे कैसे, हम तो बच ही नहीं सकते। तो याद रखें अल्लाह ताला ने फरमाया इन कैद शैतानी कहना दौईफा, शैतान की जो चाल है ना वो दौईफ है, वो बड़ी कमजोर है, कमजोर है, इसलिए कि वो क्या कर सकता है, गन पॉइंट पे तो थोड़ी हमसे कुछ करा सकता है, तो कमजोर है। आप उसके मुकाबला कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ताकत ही नहीं मुकाबला करने की, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो जहां से आता है ना, वो राइट से भी आता है, लेफ्ट से भी आता है, आगे से भी आता है, पीछे से भी आता है, जहां से भी वो आता है वो हमें नजर नहीं आता, चूंकि हमें चूंकि पता नहीं चलता तो हम उसका शिकार हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा शैतान का हमला उस वक्त होता है जब इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, तो वो तो धरना मार के बैठ जाता है। और यहां जब इंसान जज्बात में आता है, ऐसी शहवत के जज्बात होते हैं या ऐसे कोई जज्बात होते हैं, या गुस्सा आता है जब उसको, तो वो उस वक्त उसके ऊपर हावी होता है। जितना अल्लाह के जिक्र से दूर होंगे, जाहिर है सबसे बेहतरीन जिक्र तो नमाज है, कुरान है, जितना इससे दूर होंगे ना इतना उसका गलबा ज्यादा होगा, जितना इन चीजों के करीब आप रहेंगे इसका जोर टूटता जाएगा। तो बाज ये फिर भी नहीं आता, ऐसा नहीं कि बाज आ जाए, करता तो रहेगा काम, लेकिन हमारे ऊपर उस तरह से इसका वार चल नहीं सकेगा। तो ये थोड़ी पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं इस तरह से। देखें अच्छा, ये एक बात इसमें और रह गई, ये औलाद की जो उसमें साझेदारी और माल में करता है ना, बाज दफा इसी औलाद के पीछे इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, बाज दफा औलाद के ही मोहब्बत में इस तरह इंसान जुनूनी हो जाता है कि वो अल्लाह ताला के भी नाफरमान होकर बैठ जाता है, शैतान की बात सुनता। बाज दफा औलाद को नमाज के लिए उठाने के पर हमें बड़ा रहम और तरस आने लगता है, स्कूल के लिए उठाने के लिए नहीं तरस आता। तो इस तरह से ये अपने साजे लगाता है, कहता है हाय बेचारा बच्चा देखो थक के सोया है, इतना उसको ये तो उसके ऊपर बड़ा जुल्म है, उसको मासूम बच्चे को इतनी सुबह उठाना, तो शराकत कर ली ना उसने, छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको इतने नंगे कपड़े पहना दिए जाते हैं कि वो फिर बड़े होके भी उन्हीं की आदी हो जाती है। शुरू से उनको ऐसे कपड़े ना पहनाए जाएं कि जो आप नहीं चाहते कि ये बड़े होके भी पहने। शुरू से आप उनको सातिर लिबास पहनाए, शुरू से उनको पता होना चाहिए ये मेरा सतर है, इसको ढांपना है मैंने, वो शुरू से उनकी ट्रेनिंग। मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए, फोन के जरिए, कार्टून्स के जरिए, म्यूजिक के जरिए, ये डिज्नी और इनके जरिए कैसे ये गलबा पाता है, ये आजकल वीडियो गेम्स जो इनके जरिए कैसे खून खराबे को दिखाता है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है, वायलेंस को दिखाता है, ऐसे इनके दिमागों पे असर होते हैं। तो क्या चीजें नहीं हो रही, जब प्रोग्राम्स में माँ बाप से बदतमीजी करना बड़ा अच्छा दिखाया जाएगा, माँ बाप को बुरा भला कहना बड़ा अच्छा दिखाया जाएगा, तो बच्चा क्या करेगा कर को? जब कर सिर्फ लैंग्वेज दिखाई जाएगी तो बच्चा क्या करेगा? जब वो इन्हीं गेम्स का एडिक्ट हो जाएगा तो क्या करेगा? आज आप फिर देख लें कि मस्जिद की आबादी कितनी और सिनेमा की आबादी कितनी, और आज आप देख लेंगे कितने लोग हैं जो फजर के लिए उठते हैं, कितने हैं जो सोए रह जाते हैं। आज बच्चे वक्त से पहले जवान हो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि हम अपने हाथों से अपने बच्चों के खातों में तबाही का सामान दे रहे हैं। हमें पता भी नहीं कि शैतान कब भी अगवा करके ले गया हमारे बच्चों को भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला महफूज रखे हमें शैतान मर्दूद से और इसके लश्करों से और इसके फितनों से और इसके वसवास से। तो इसके लिए हमें दीनी माहौल में रहने की जरूरत है, कुरान से जुड़ने की जरूरत है, अच्छे साले लोगों के अंदर उनकी कंपनी रखने की जरूरत है, दुआएं करने की जरूरत है, अपना ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त अल्लाह के जिक्र में है, उसका जिक्र जितना करते रहेंगे उतना ही शैतान दूर रहेगा, उसमें गुजारने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा याइदुमु शैतानु इल्ला गुरूरा, शैतान जी का जो वादे है ना सारे धोखे पे। और मैंने आपको सूरह इब्राहिम की आयत 12:22 है उसका बताया कि उस दिन वो खुद कन्फेस करेगा कि हाँ मेरे सारे वादे झूठे थे, मैं सारे मेरे बातें मेरी गलत थी। अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी, अल्लाह हमें बचा ले, हमारी नस्लों को बचा ले या रब। या अल्लाह ताला हमारे, हम जो भी कोई भी काम करें, हम कोई भी नेकी का काम, उसको भी तू महफूज रख लेना, शैतान से महफूज रखना, और गुनाहों से हमें दूर कर दे, शैतान के रास्ते पे चलने से हमें दूर कर दे, सिराते मुस्तकीम पे चला दे। और कभी ये रेस्ट नहीं करता, कभी ये ब्रेक नहीं लेता, कभी ये मायूस नहीं होता इंसान, जितना मर्जी नेक, मैंने आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बड़ा था, तो जितना भी कोई नेक हो उस कभी ये नहीं कहता कि आए ये तो मेरे हाथों से निकल गया। हम तो कहते ना कि आए अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, हम तो मायूस हो गए, अब तो ये कभी सीधे रास्ते पे आ ही नहीं सकता। नहीं, वो नहीं ये कभी कहता कि ये तो मेरे रास्ते पे आ ही नहीं सकता, तो मैं अब इसको छोड़ देता हूं। और सबसे ज्यादा हमला किस वक्त करता है? मौत के बाद, कि इंसान को मौत के वक्त वो चाहता है कि अब ये किसी तरह से इनकार कर दे अल्लाह का, और इसके दिल में वसवसा आ जाए कि पता नहीं वो सब ठीक था भी कि नहीं ठीक था जो मैं आज तक जिस पे ईमान रखता रहा। और जब इंसान ऐसा सोचेगा उसका ईमान चला जाएगा, शकू को शुभात डालता है उस वक्त, आके चाहता है कि इसकी मौत ईमान पे ना हो, उस वक्त अपना पूरा जोर लगा देता है। तो अल्लाह ताला हमें कलमे वाली मौत अता फरमाए और ईमान पे हमारा खात्मा हो। तो इसके सारे ये बातें झूठे हैं, जितनी ये बातें करता है ना और डराता है इंसान को, तुमने ये कर लिया ना तो देखना तुम्हें सारे छोड़ जाएंगे, तुम अल्लाह की तरफ आ गए ना तो देखना, तुमने अगर ये अल्लाह का हुक्म मान दिया तुम्हें वो पूछेगा कौन, लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, तुम्हारे ऐसे करेंगे। ये जो ऐसे वसवसे आ रहे होते हैं ना, ये शैतान की बातें, ये धोखा है, धोखा है ये, और इतनी बेकार चीजों को इतना अहम बना के दिखा देता है, धोखा ही उसका, ये सारा धोखा है। जितने मैंने आपको 15 16 17 बातें बताई हैं, ये सब उसके धोखे की बातें हैं।